ताली से दीदी जी का हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है प्यारे बाबा की, मम्मा बाबा की तपस्या स्थली मधुबन के इस प्रांगण में। स्वयं भगवान ने तो अपना अवतरित होकर के कर्तव्य किया, जिन महान विभूतियों को अपने साथ सहयोगी बनाया उन महान विभूतियों को आज हम अपने सन्मुख पा रहे। कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो देवियों को गुफाओं में से निकाल करके भेज देते हैं। तो आप सबकी तपस्या भगवान को मंजूर हो गई, मंजूर हो गई। हम सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों भाग्यशाली है? ऐसे महान देवियां, बहुत थोड़े से ऐसे महान विभूतियां आज यज्ञ में हैं। अनमोल हीरे, कोहिनूर हीरे, जिसको स्वयं भाग्य विधाता ने तराशा है, ऐसे महान विभूति आज हमारे बीच में है। दीदी, मैं समझती हूँ इस भट्टी में शायद पहले आए अवसर होगा। अभी तक की जो भट्टियां चल रही, इस साल की भट्टी में पहली बार आए आप?
ऊपर
यहाँ ना पहली बार? देखो
नहीं, यहाँ तो भट्टियों में आई हूँ मैं।
इस साल दीदी, इस साल की भट्टियों में?
हाँ, इस साल की
भट्टी में आप सबको पहला अवसर मिला है। एक बार आप सभी देखो दिल से दीदी का धन्यवाद करेंगे। तो मम्मा बाबा ने, कहते ना, बहुत फुर्सत से सजाया है इन आत्माओं को, बहुत सुंदर सजा धजा करके विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनाया। उनमें से एक हमारी संतोष दीदी जी, हाँ, मम्मा बाबा के साथ का पालना लेने का, उनके हाथों से तराशने का सौभाग्य दीदी को मिला हुआ है। बचपन से दीदियों का ऐसा सौभाग्य, आंख खुलते ही किसको देखा? भगवान को देखा, भगवान के कार्य को देखा, भगवान की दुनिया को देखा। दुनिया संसार को देखने का मौका ही नहीं दिया बाबा ने। अपने गोद में पाल करके, अपने समान बनाकर आज हम सबके सामने एक सैंपल एग्जाम्पल के रूप में रखा। बहुत से ऐसे भाई बहन, हमने तो मम्मा बाबा को देखा ही नहीं, लेकिन इन आत्माओं को देख करके वो भासना आती है, पालना मिलती है। तो ऐसे विशेष दीदी जी हमारे बीच में आज है। मेरे पास तो शब्द नहीं निकल पा रहे, थोड़ा थोड़ा सा ही मैं सुना पाऊंगी। और एक सौभाग्य क्या है पता है आप सबको? एक और गहरी बात, बाबा की जो पुत्र वधु थी, जिनको सबसे पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, उस निराकार परमात्मा को साकार में पहली बार प्रवेश्यता का सौभाग्य मिला था देखने का, ऐसे दादी जी के अंग संग रही दीदी का ये सौभाग्य मिला। ऐसे महान विभूति दादी के अंग संग रहकर आप सोचो, उन क्षणों को, उन भावों को, उस दृश्य को दीदी ने तो जरूर क्या किया होगा, दादी जी से सुन करके अपने दिल में समाया होगा। तो दीदी, ऐसे तो आज आपका सब्जेक्ट है बेहद की वैराग वृत्ति, लेकिन हम कुछ चाहेंगे कि कुछ अनुभव भी, दादी ब्रिजिंद्रा दादी जी के साथ का अनुभव भी अवश्य हमारे बीच में आप रखेंगे। फिर से मैं दीदी जी का हार्दिक स्वागत करते हुए दीदी के मुखारविंद से, इन देवियों के मुखारविंद से जो वरदान हमारे लिए निकलेंगे वो हमारे लिए सत्य वचन होंगे, तो उन वरदानों से हम लाभान्वित होंगे। दीदी जी,
ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को सारे विश्व में से चुन चुन के अपना बनाया। बाबा कहते थे बच्चे वन वन की काठी है, अलग अलग पेड़ों की है काठी, माना लकड़ी, परंतु सबको एक करके एक गुलदस्ते में बाबा ने परो दिया, एक बड़ा सुंदर गुलदस्ता बना दिया, कांटों को फूल बना दिया। ऐसा कोई बागवान नहीं होगा जो कांटों को फूल बनावे, वो तो एक ही बागवान है जिसमें ये शक्ति है कि जो भी कांटे हैं वो निकाल के उसके बदले उनको फूल बना दे। हम सब बाबा के बच्चे परम सौभाग्यशाली है जो हम बाबा के बन गए। बाबा ने हमको स्वीकार कर लिया और अपने कार्य में लगा दिया। हमारा गीत भी है ना, मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता है, हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। मनुष्यों को भाए तभी तो क्या हालत हुई हमारी, परंतु अभी प्रभु को भाए तो प्रभु ने हमारे को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे जीवन का फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन का बेहद का वैराग, जब तक वैराग नहीं है तब तक त्याग नहीं है, त्याग नहीं है तो सब तपस्या नहीं है, तपस्या नहीं है तो सफलता नहीं। दुनिया में दो प्रकार के वैराग हैं, एक है हद का वैराग और दूसरा है बेहद का वैराग। हद का वैराग जो है वो परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को आता है, और अगर परिस्थिति ठीक हो जाती है तो वापस वो वैराग जो है उनका गायब हो जाता है। परंतु जो बेहद का वैराग है, जो बाबा ने आके सिखाया है, वो परिस्थिति के आधार पर नहीं परंतु ज्ञान के आधार पर आधारित। आप साकार बाबा का भी जीवन देखेंगे, बाबा को जिस समय विनाश का साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, और जब बाबा को यह समझ में आया कि ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, तभी बाबा के अंदर वो वैराग उत्पन्न हुआ। तो हम बच्चों को भी जो बेहद का वैराग आता है, बेहद का वैराग आखिर है क्या? हद का वैराग तो घर बार छोड़ के भाग के चले जाते हैं। नहीं भी भागते होगे तो अलग होके रहते होगे, कुछ तो करते ही होगे वैराग आता है। यहां तो सबके साथ में रहते हुए, सबके साथ तोड़ निभाते हुए और अपनी स्थिति को परवृत्ति, प्रवृत्ति से परवृत्ति में ले जाना, ये बाबा सिखाता है। हद का वैराग कैसा होता है आपको एक छोटी सी बात बताती हूं। एक व्यक्ति था, हद के वैराग और बेहद के वैराग में देखना कितना फर्क। एक व्यक्ति था, जरा गर्म दिमाग का था, कलयुग चलता है ना तो गर्म दिमाग ज्यादा होता है, तो जिसके कारण रोज उसका उसकी जुगल से झगड़ा होता था, तुम खाना अच्छा नहीं पकाती, ऐसा नहीं करती है, और वो हमेशा उसको डर बताता था, तुम देखना मैं एक दिन घर बार छोड़ के चला जाऊंगा। एक बारी उस माता को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा भले जाके बताना, सिर्फ बोलता क्या है, सिर्फ बोलता है मैं जाऊंगा जा। उसने एक थैली उठाई, कपड़ा डाला उसमें और चला गया। जंगल में गया, वहां एक आश्रम था, वहां जाकर के पहुंचा। वहां एक सन्यासी था, महात्मा, उसको बोला गुरुजी मेरे को सन्यास करना है, मैं घर बार छोड़ के आ गए। उसके पास भी कोई शिष्य नहीं था, उसने कहा भले आया, आया तो बहुत अच्छी बात है, सेवा करो, अभी तुम्हारे को तुम अपना जीवन सफल करो, सेवा करो। उसको कम क्योंकि क्या बगीचा होने के कारण पत्ते वत्ते बहुत गिरते थे झाड़ के, झाड़ू वाड़ू लगाने का काम दे दिया। पूरा हुआ, एक दिन बीता, दो दिन बीते, अच्छा चल रहा था, खुश हो गया, बोला यहाँ तो अच्छा खाना पीना मिलता है सुबह। फिर दो तीन दिन के बाद कुछ भी बना नहीं सवेरे से खाने का, तो बोला उसके पेट में तो चूहे भाग रहे थे, बेचारा काम करे खाने को कुछ नहीं। तो गुरुजी को बोला गुरुजी हम आपके लिए भोजन बनावे। गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा है आज मेरा तो उपवास है और तुम्हारे को ये इतने यहाँ पेड़ लगे हुए है, आम के पेड़ है, नीम के पेड़ है, अमरुद के पेड़ है, इनके पत्ते लेके जूस निकाल के पी लो। उसने जब वो सुना तो उसका बिचारे का वैराग तो वहां ही हट गया, वापस भाग के आ गया। तो ये हद का वैराग इतना टेम्पररी होता है, अगर उनको समझेगा ना इससे तो घर अच्छा था, उधर कम से कम रोटी तो गर्म बना के देती थी। तो उनका टेम्पररी वैराग होता है, परंतु यहाँ बाबा ने जो हम बच्चों को सदा काल का बेहद का वैराग बताया, इसमें भी स्टेजेस। आप बाबा की जीवन कहानी को अगर देखेंगे, क्योंकि ब्रिजेंद्रा दादी हमें हमेशा कहती थी बाबा के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आए। शुरू शुरू में बाबा वैसे बहुत रमणीक नेचर का था, सबके साथ हंसना बैलना, परंतु धीरे धीरे बाबा की नेचर में फर्क पड़ता गया। जैसा जब किसी पर घोड़े पर सवारी करनी होती है तो उसको तैयार किया जाता, तो वैसा शिव बाबा जैसा कि अपना रथ तैयार कर रहा, तो धीरे धीरे बाबा अंतर्मुख होता गया। सब बातों में से बाबा का इंटरेस्ट कम हो गया, तो घर वालों को बहुत फिक्र हो गई कि बाबा इतना घूमने फिरने वाला, अपने परिवार को ले जाता था घुमाने को करने को, सबके साथ इतना मिलता जुलता था, बाबा एकदम चुप चुप रहने लगे। ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, सभी को फिक्र लग गई, समझा बीमार है क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। परंतु बाबा अपने ऊपर जैसा कि मेहनत कर रहा था, पुरुषार्थ कर रहा था, तो जो बेहद का वैराग है, अभी हम सभी ने बाबा ने जो त्याग सिखाया, स्थूल त्याग, ड्रेस बदली हो गया और रहन सहन बदली हो गया, खाना पीना बदली हो गया, ये स्थूल त्याग हो गया, स्थूल बातों का वैराग हो। परंतु जो आंतरिक स्थिति है हमारी और जो असली वैराग, इन बातों का वैराग इजी है। अभी हम जैसा बाबा के बन गए, सेवा में लग गए, लौकिक को छोड़ दिया, अलौकिक में आ गए, इसमें बड़ी बात नहीं। बेहद का वैराग का मतलब ये है, पुरानी देह, पुराने संबंधी, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पराई बातें, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने विचार, इन सभी से वैराग। जब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं है, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो बाबा ने आके हमारे विचारों में परिवर्तन लाया, संकल्पों में परिवर्तन लाया, पुराने जो संकल्प थे उनको व्यर्थ संकल्प, फालतू संकल्प जो है, उन बातों से हमें न्यारा बनना सीखा। पराई बातें सुनने का जो इंटरेस्ट था, माताओं को जरा ज्यादा फुर्सत होती है, आपस में मिलेंगे तो थोड़ी चर्चा चलती है, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, उसका वो। बाबा ने हम बच्चों को क्या किया, इन पराई बातों से वैराग दिलाए, पर चिंतन पर दर्शन इसको छोड़ करके स्वदर्शन चक्रधारी बनाए। ना पर चिंतन करूं ना पर दर्शन करूं, उसके लिए बाबा ने हमें कौन सा स्लोगन दिया? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। सबसे पहला नंबर किसका हुआ? बुरा मत सुनो, बहुत इंपॉर्टेंस है ये। कान देखो, आंखें हैं देखने के लिए, पर आंखों को दरवाजा है बंद करने के लिए। अगर मुझे नहीं देखना होगा तो मैं दरवाजा बंद कर सकती, मुझे नहीं बोलना होगा तो इधर भी दरवाजा है, मुंह को भी, कान को दरवाजा है, दोनों कान खुले हैं, दरवाजा नहीं है। उसको अंदर का दरवाजा लगाना पड़ेगा। और वैसे देखो ये कान कितने इंपॉर्टेंस हैं। जब स्कूल में बच्चे की भूल होती है तो टीचर क्या पकड़ता है? नाक नहीं पकड़ता है, कान पकड़ता है। जब ये माफी मांगते हैं तो क्या पकड़ते हैं? तो इंपॉर्टेंस है ना। और वैसा भी आप देखेंगे, जब शहर में कुछ घमसान होता है, रेट्स होता है कुछ, आप मार्केट की तरफ नजर घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या बंद करते? दुकान। दुकानों के शटर फटाफट गिरते हैं, बरोबर? अगर नहीं बंद करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, ये दुकान माना दो कान बंद करो। तो जब ये दुकान ही बंद हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि इसके द्वारा हम रॉ मटेरियल लेते हैं, कच्चा माल, कोई भी बात उठाते हैं, सुनते हैं, फिर फैक्ट्री चलती है संकल्पों की, फिर वाणी चलती है, फिर वो व्यक्ति आती है तो हमारी दृष्टि बदलती है। तो इसीलिए सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को ये दुकानें बंद करना सिखाया। ये दुकान बंद कर डालो, कच्चा माल आएगा ही नहीं तो फैक्ट्री चलेगी नहीं ना। फालतू बात सुनेगे ही नहीं तो सोच व्यर्थ संकल्प चलेगा ही नहीं, फालतू बात सुनेगे नहीं तो दृष्टि तुम्हारी बदली नहीं होगी उस व्यक्ति के लिए, सोच नहीं चलेगा, मुख से कभी बोलेगे भी नहीं, अगर सुना हुआ होगा तो जरूर कभी न कभी निकलेगा। तो इसीलिए बाबा ने अंदर से दरवाजा बंद करना सिखाया। तो जब हम अपने ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि हमें पराई बातों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमें करना है तो क्या करना है? स्वचिंतन करना है। हमेशा कहा जाता है स्वचिंतन ये उन्नति की सीढ़ी है, और परचिंतन जो है वो पतन की जड़ है। परचिंतन तब चलता है जब हम पर का सुनते हैं, पर का देखते हैं, उसके लिए बोलते हैं, तो अंदर ही अंदर वो चिंतन चलता रहता, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, जिससे हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये वैरायटी ड्रामा, पांच अंगुलियां एक जैसी नहीं मिल सकती है, इतनी मनुष्य आत्मा एक जैसी कैसे हो? तो ये हमें हमेशा ध्यान में जब हम रख के चलते हैं कि हमारा, हमको क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनना, संपूर्ण बनना। जब हमारे जीवन का लक्ष्य बाप समान बनना है तो बाबा ने कभी फालतू बातें सुनी? बाबा ने कभी फालतू किसी से बात किया? मम्मा ने कभी बात किया? किसी की ताकत थी मम्मा के पास आके पर चिंतन करके जाते? कहते हम तो नहीं बोलते हैं, परंतु कोई सुनाता है तो सुनना पड़ता है। क्यों? आज देखो इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको इंटरेस्ट नहीं, आपकी ताकत है उसको सुनाने की? हम ऊंचा ज्ञान किसी को जबरदस्ती नहीं सुना सकते। कोई फालतू बात नहीं मुझे जबरदस्ती सुना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हमको कुछ तो इंटरेस्ट है ना उसमें। और संगम युग पर सबसे बड़ा खजाना है समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। तो हम समय के खजाने को क्या करते? वेस्ट करते। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम जो बेहद के वैरागी है, तुम्हें क्या करना है? पराई बातों से तुम्हें वैराग आना चाहिए, पुरानी बातों से वैराग आना चाहिए। अच्छी बात किसी को याद नहीं रहती है, पुरानी पुरानी बातें, जो सड़ी गली हुई बात होगी ना वो याद आएगी, फलाने ने फलाने के साथ ऐसा किया था, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के साथ, मेरा भी बाप मर गया तेरा भी बाप मर गया, पर बात नहीं मरती, वो बात घूमती रहती है मगज में, इसने ऐसा किया था इसने ऐसा। तो जो बीत गया उसको क्या कहते? भूतकाल। भूतकाल कहते ना हिंदी में। तो भूतकाल को सोचना माना भूत को अपने साथ लगाना, उसको गले लगाना हो गया ना। इसीलिए बाबा ने कहा जो बीत गया, बीती सो बीती ये दुनिया ने जीती। देखो ये मोटी मोटी बातें हैं, इससे हमको वैराग है। या बीती अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं, बाबा की बात याद नहीं रहेगी, उल्टी सुलटी बात याद आएगी। वो टेव पड़ गई हमको 63 जन्मों की, वो टेव ही हमारे को तोड़ने की, वही तो योग है, वो आदत पड़ी हुई है, कन रस बैठा हुआ है, फालतू देखने की आदत पड़ी हुई है, जिन बातों से हमारा कनेक्शन नहीं, हम काय को देखें? मामा का नहीं बताते। मामा एक बार ऐसा ही बॉम्बे में आई हुई थी, एग्जीबिशन में आई थी मामा, बाबा खास भेजते थे, पहले नई नई प्रदर्शनी निकली थी ना, तो बाबा ने खास मामा को भेजा, तो मामा ऐसा मामा को लेके जा रहे थे रमेश भाई और निर्वैर भाई गाड़ी में, तो सामने एक पोस्टर था बहुत अच्छा, उसमें कोको कोला का पोस्टर था, उसमें से बॉटल में से लिक्विड ग्लास में गिरता था, ग्लास का लिक्विड वापस बॉटल में जाता। तो ये लोग चर्चा कर रहे थे कि हम स्वर्ग का ऐसा कुछ मॉडल बनावे जो लोगों को समझ में आए। फिर मम्मा तो पीछे बैठी थी, जमुना बहन और मम्मा बैठी थी पीछे, मम्मा की ब्राह्मणी थी ना जमुना। तो रमेश भाई ने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने ये पोस्टर देखा सामने? कितना अच्छा पोस्टर था, हम बना सकते इसके ऊपर। मम्मा ने कहा क्या बोला? बोला अभी ये जो पोस्टर था वो देखा मम्मा आपने? मम्मा ने कहा मैं सारे दिन में जिस समय क्लास कराती हूँ उसी समय सामने देखती हूँ, बाकी मैं कभी सामने देखती हूँ। आप क्या समझते मम्मा ऐसी मम्मा बन गए? कितनी बड़ी तपस्या है, सारे दिन में सामने भी नहीं देखती। बोलो मैं एक ही बार सामने देखती, कहाँ नहीं देखी? स्वचिंतन। आप मम्मा की मूर्ति तो देखो, सदैव अपने में खोई हुई है, उसको फुर्सत नहीं, हम उसके बच्चे हैं। तो जो हमारे माँ और बाप की क्वालिटी है वो हमको धारण कर, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया जिन बातों से तुम्हारा तहलक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, वो बातें देखने में फायदा नहीं है, वो बातें सुनने में कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा समय वेस्ट होता है, तुम्हारी शक्ति वेस्ट होती है, तुम्हारे श्वास वेस्ट होते हैं, तुम्हारे संकल्प वेस्ट होते हैं। आत्मा शक्तिशाली बनेगी या कमजोर बनेगी बताओ इससे। और हम कहेंगे हम बेहद के वैराग्य, क्या वैराग्य है? सिर्फ ड्रेस बदली करने से वैराग्य नहीं आता है, सिर्फ मित्र संबंधियों को छोड़ देने से वैराग्य नहीं आता है। बाबा ने कहां छोड़ा, सब साथ में रहे, परंतु साथ में रहते हुए कितने डिटैच। हम लोगों को बरसों तक मालूम नहीं था, हम देखते थे दादियों को कौन कौन, एक एक परिवार के कितने मेंबर होते थे, कौन किसका क्या लगता है हमको पता भी नहीं होता। सब बाबा के बच्चे हैं, सब हम एक। तो ये जो पुराने नाते रिश्ते बाबा ने प्रवृत्ति में रह के निवृत्त होना बच्चों को सिखाया। प्रवृत्ति में रहते हुए उपरम वृत्ति बनना सिखाया कि नीचे रहते ही क्यों, ऊपर चले जाओ, अपनी वृत्ति को ऊंचा बना दो। नीचे रहेंगे तो झमेले झमेले हैं, ऊपर चले जाएंगे तो कोई झमेला नहीं। वैसे भी आप देखो किसी भी बात को आप नजदीक खड़ा होकर देखेंगे बड़ा रूप दिखाई पड़ता है, आप ऊपर से देखेंगे तो आपको छोटा रूप दिखाई पड़ता है। हम लोग प्लेन में जाते हैं, नदियां तो नालों के माफक दिखाई पड़ेंगी, इतने बड़े बड़े बगीचे से देखेंगे दो चार झाड़ है, कुछ कुछ नहीं दिखा। तो ऊंची स्थिति जो है हमारी उपराम की स्थिति, वो इतनी न्यारी और इतनी प्यारी है, वो हमको डिटैच कर दे। कोई भी बात है बाबा कहते हैं तुम उठ जाओ यहां से, ऊपर चले जाओ, प्रैक्टिस करो। तो जितनी जितनी हम प्रैक्टिस करते अपनी तरफ ध्यान देते, उसके लिए हमारे को क्या करना है, फालतू बातों का कभी भी इंटरेस्ट नहीं ले। जिन बातों से मेरा कोई तहलक नहीं है वो हमको सुनने की क्या जरूरत। आज देखो जैसा कोई आंख का डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट जाता है, वो कहता है मेरे कान में बहुत दर्द है, वो सुनेगा बैठ के? वो बोलेगा तुम रॉन्ग नंबर आए हैं बाबा, वो कान वाले के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए। उसका जो है उसकी जो विशेषता वो उतना ही सुनेगा, ज्यादा नहीं सुनेगा। और हम जो भी कचरा लाते हैं भले सुनाओ, हमारा ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो, हमारे को क्या लेना देना है, तुम्हारा कुछ भी होने ना। तो बाबा हम बच्चों को इस बात से वैराग दिलाता है कि व्यर्थ व्यर्थ सुनना बंद करो, व्यर्थ देखना बंद करो। बाबा बड़ी मजे की बात सुनाता था। बाबा कहता था देखो मैं छोटा था ना, बहुत बड़ी बाबा की मुरली में, मैं छोटा था ना मेरे को बहुत वैराग था, बस मेरे को ब्रह्मचारी रहना, शादी वादी कुछ नहीं करनी, ऐसा ही रहना। तो एक बारी आगे चल के वहां सिंध हैदराबाद में रूप सुंदरी में पिक्चर लग गए, जाकर के पिक्चर देखा तो रूप ही बदलियो, मतलब देखने का देखो कितना इफेक्ट होता है। बाबा क्यों सुनाता है, हमारे अंदर वो क्वालिटी बन। इसीलिए बाबा कहते हैं सिनेमा, सिनेमा माना सीन की माँ, पाप की माँ। अभी तो सिनेमा के लिए थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, हरेक के हाथ में थिएटर पकड़ा होगा, कितना समय उसमें लगाते, ठक 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 करते रहेंगे। ये भी कितनी बड़ी माला है, इसको क्या कहेंगे। ये जो साधन है ये सेवा के लिए है, ये अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए है। अपना टाइम वेस्ट और शक्ति वेस्ट करने के लिए नहीं। ये भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, इसके ऊपर भी हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर सारा समय उसमें लगा देंगे तो तपस्या कभी करें, उसमें सब कुछ आता है, अच्छा भी आता है, बुरा ज्यादा अच्छा कम। इन बातों से परे जाना बाबा ने सिखाया। संकल्प हमें, संकल्प भी कौन से संकल्प करना, जिससे मेरी आत्म उन्नति है, उन संकल्पों में हमको रमन करना। बाबा ने संग दोष के लिए कहा था, हम बच्चों को कहा संग को संभालो, जैसा संग वैसा रंग लगता है। अभी अज्ञानियों के साथ तो जाके संग नहीं करेंगे, पर ज्ञानियों में भी हमको किसका संग करना चाहिए, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जो आत्म उन्नति में लगे हुए हैं, जो तीव्र पुरुषार्थी, उनका संग करेंगे तो हमको फायदा होगा। जो ढीले ढाले, उनका संग करने से हमको क्या फायदा होगा बताओ? उनको जाके बोलेंगे ना, क्या करें, ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हमारी अवस्था खराब हो गई। वो कहेगा हाँ भाई, मेरी भी ऐसी हालत है, क्या है। कहते उल्लू के घर में आए मेहमान, कहा मैं उल्टा लटका हूं, तू भी लटक जा। और ही सपोर्ट मिल गया हमारे को अवस्था गिराने का, अवस्था बढ़ाने का कहां सपोर्ट मिल। तो संग दोष से भी हमको बच के चलना है ना। तभी बाबा कहता है ये भी अक्कल चाहिए कि किसका संग करना है। बाबा ने हम बच्चों को सारा बताया हुआ है कि जिन बातों से तुम्हारी आत्म उन्नति नहीं है, उन बातों से तुम्हें दूर रहना। जिससे तुम्हारी आत्म उन्नति हो, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी वृत्ति उपराम रहे, फंसी हुई वृत्ति नहीं रहे, ऊपर राम रहता है, तुम्हारी वृत्ति वहां जावे ना, इधर क्यों फंस गई। जितनी जितनी उपराम वृत्ति होती है, उतनी इन बातों से हम क्या होते, परे जाते, वैराग वृत्ति, रहम की वृत्ति, दया की वृत्ति। क्योंकि जैसी वृत्ति होती है वैसे ही संकल्प चलते, जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि होती है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बनती। हम ब्राह्मणों का जो जीवन है, नई सृष्टि स्थापन करने का जो कार्य बाबा ने दिया हुआ है, वृत्ति के द्वारा हमारे को वायुमंडल को पावरफुल बनाना। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अगर हमारी वृत्ति उपराम वृत्ति है, हमारी वृत्ति वैराग की वृत्ति है, इन फालतू बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो हमारे जो संकल्प है वो ऐसे पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, ऐसे पावरफुल संकल्प चलते हैं, वो वातावरण में जाते। आप ऐसा नहीं समझना कौन देखता है हम क्या सोचते हैं। शुरू शुरू में जब ये हम लोग आए, तभी बाबा कहता था बच्चे कोई बात नहीं, संकल्प चला तो कोई बात नहीं, वाणी से और कर्म से उल्टा काम कभी नहीं करो। छुट्टी देता था, मम्मा की तभी मुरलियां चलती थी, मम्मा कहती थी आप ये नहीं समझना बाबा ने छुट्टी दिया तो तुम भले है, कुछ भी संकल्प चले नहीं। यही बाबा तुमको एक दिन कहेगा कि तुम्हें अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करना। और सचमुच हुआ भी ऐसा, अभी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, तुम जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही कर्म, तुम्हें अपने संकल्पों के ऊपर जापता रखना है। मम्मा ने अपने संकल्पों के ऊपर शुरू से ही कंट्रोल रखा, जिसके कारण मम्मा के पास इतनी शक्ति जमा हो गई, सर्वशक्तियां उसमें आ गई, क्योंकि वो कभी व्यर्थ नहीं सोचा उस। मम्मा कहती थी व्यर्थ का संकल्प आवे फुल स्टॉप कर दो, कभी भी व्यर्थ नहीं सोचो। तुम्हारी ताकत लीक हो रही है, एक तरफ तो तुम बाबा से शक्ति ले रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी शक्ति लीक होती जा रही है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी में, व्यर्थ कर्म में बैलेंस क्या रहा? परिवर्तन कैसा आएगा? शक्ति जमा ही नहीं हुई तो परिवर्तन आएगा ही नहीं। इसीलिए व्यर्थ के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल चाहिए ना। परंतु वो कभी होता है, देखो बाबा ने हमारे को बेहद का वैराग्य कैसे दिलाया, पहले से ये दुनिया क्या है इससे नफरत दिलाई, ये पुरानी दुनिया है, ये छीछी दुनिया है, ये मुर्दों की दुनिया है। अरे बाबा ने क्या नहीं बोला, हमको भी अनुभव हुआ, अरे सही बात है, ये मतलब ही दुनिया है। हम कहते हैं हाँ बाबा ये तो है, बरोबर है, फिर इससे दिल क्यों लगा रहा? जब ये ऐसी दुनिया है तो इस दुनिया को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें परिवर्तन कर देना। ज्ञान के आधार पर बाबा ने इससे हमारे को नफरत दिलाई और हम लोगों ने अनुभव किया कि आज थोड़े ही अनुभव, आधा कलप से अनुभव करते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है, देहधारियों देह अभिमान वाली दुनिया, इसमें क्या फायदा है? हमारा ताज गया, तकत गया, तिलक गया, सब कुछ गया हमारा इसके पीछे। तो ये सारी समझ बाबा ने हमको दिया ना, समझ के आधार पर कोई भी बात जब छोड़ते हैं वो परमानेंट हो, त्याग होता। अनुभव होता है, बाबा कहते हैं ना इस चीज की दुनिया सचमुच कितनी गंदी दुनिया है, क्या वाइब्रेशन है, कैसे लोगों के कैसे नहीं, हमको ये चेंज करने सब। लोग बेचारे बेताली हुए पड़े, कंट्रोल ही नहीं है संकल्पों के ऊपर। तो बाबा ने कैसी तपस्या किया अभी बताती हूँ, ब्रिज इंद्र दादी ने जो बताया। शुरू शुरू में हम देखा, खुद देखा कि बाबा, पहले तो बाबा को स्थूल रीति से बाबा ने सब कुछ बदल किया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, बेहद का वैराग माना, मैं और मेरापन खलास, उसमें ये दो शब्द नहीं होते, मैं भी नहीं और मेरापन भी नहीं। जानकी दादी को यही तो पाठ पक्का था, सारा दिन यही तो बोलती थी, मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। सारा समय पक्का कराती, लास्ट में तो यही कर रही थी दादी। तो बाबा ने जो किया, तपस्या किया, तपस्या कर करके कैसा वो बेहद का वैरागी बन के अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया बाबा। तो शुरू में हम देखते थे बाबा, हम जब भी बाबा से मिलते थे, बाबा बहलाता था, बातें अच्छी अच्छी सुनाता था, सब कुछ करता था, हम बाबा को सारा समाचार सुनाते थे, सेवा समाचार जो होता था ना वो आके सुनाते थे। बाबा बहुत रुचि से सुनता था और नहीं लिख के भेजेंगे तो बाबा कहता था तुम लोग समाचार क्यों नहीं लिखते हैं? समाचार लिखते थे और ये भी बोलता था तुमने क्या समझाया वो भी लिख के भेजो, वो भी लिख के भेजते थे, करेक्शन होती थी तो रिटर्न में भी लिखता था बाबा ऐसा नहीं ऐसा समझा। फिर धीरे धीरे बाबा इन बातों से भी जैसा न्यारा होने लगा। हम आते थे, बाबा पार्टी लेके आएंगे, आके बैठेंगे सभी और बाबा को बताएंगे, बाबा अभी बॉम्बे में हो, चिमनानंद का ये प्रवचन चल रहा है, इधर चल रहा, हम लोगों ने फिर वहां जाके ऐसी सेवा किया, ये किया वो किया। बाबा रुचि से सुनता था। फिर धीरे धीरे देखा बाबा जैसा इस सेवा समाचार से भी उपरम होता गया। एक बार ऐसा ही ग्रुप आया था, हमारी दादियां भी थी बड़ी, तो बाबा को सुना रहे थे, बाबा ऐसा ऐसा हुआ वहां पर, ये सेवा चली, ये सेवा चली, ये सेवा। वो आया था, उसने ये सुनाया, फिर हमने ऐसा सुना, बाबा ऐसा सुन रहा था जैसे है ही नहीं। फिर बोला पता नहीं ये क्या वहां का सारा कचरा इधर लेके आए, और ये ऐसा उठ के भागे, हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम तो पहले तो सुनता था तो सुनाते थे, आदत पड़ी हुई थी। तो बोला ये क्या कचरा लेके आए वहां का सारा। बोलता भी कोई सुनाए, किसकी ताकत होगी सुनाने। तो धीरे धीरे जैसा बाबा का इन बातों में भी इंटरेस्ट कम हो, और बाबा ने ऐसी तपस्या किया, इतना अंतर्मुख हो गया, जो बाबा की वृत्ति का वायुमंडल के ऊपर कितना प्रभाव होता था। बाबा के कमरे में जाते थे, हमारा खुद कानू में, बाबा के कमरे में जाते थे, सोचते थे पहले कि हम बाबा को ये बात सुनाएंगे, ये बात सुनाएंगे, ये बात पूछेंगे। कमरे में जाएंगे तो बैठा होता था, बैठा है जैसा है ही नहीं। भी हम भी जाके बैठ जाते थे सामने, हमारे भी सारे संकल्प एकदम स्टॉप, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। काफी समय बाबा दृष्टि से, बड़ी पावरफुल। फिर बाबा पूछते थे बच्चे कुछ बोलना है, फिनिश। कुछ बोलने का है ही नहीं, बोलने की बात ही नहीं रहती थी। जैसा संकल्पों को ब्रेक दे देता, इतनी ताकत उसमें। फिर बाहर आते थे तो याद आता था, अरे गए थे बात करने, बात तो किया ही नहीं। तो ये बेहद के वैराग्य की ये रिजल्ट समझा। फिर धीरे 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 इन बातों से जैसा एकदम उपराम होता गया, और वो अनुभूति कराई सब बाबा में से, वो अनुभव होता था। जैसा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, निराकार के सारे गुण साकार में देखे, उसकी जो महिमा है वो सारी साकार के द्वारा स्पष्ट की, अनुभूतियां कराई उसने। इसीलिए भले ब्रह्मा और शिव अलग अलग है, परंतु वो इतने कंबाइंड हो गए थे जैसे अलग करना ही मुश्किल हो जाए। बाबा कहते हैं लव में लीन हो जाओ, तो बाबा की वो लव लीन स्थिति थी, उस लवलीन स्थिति में औरों को भी लीन कर डालता। बहुत आनंद है उस स्थिति में। एक बार टेस्ट बैठ जावे ना उस स्थिति का, बहुत आनंद आता है। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और ये जो परेश बाबा ने बताई ना, हमारे को व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ, ये बंद करना चाहिए। परेश करने के बगैर फायदा नहीं होता। बाबा देखो अभी भी बता रहे थे, बच्चे तुम जो मेरे साथ वायदे करते हो, वायदा जो किया है उसको रिवाइज करो रोज। रिवाइज करने से रियलाइजेशन की शक्ति आती कि हमने बाबा को क्या, रोज अमृत वेले हमने बाबा से क्या वायदा किया, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे कंप्लीट बनना है, मुझे बाप समान मत। तुम घड़ी घड़ी उसको रिवाइज करो, एक बारी बोलने से, एक बारी करने से नहीं होता है, रिवाइज करने से वो बात पक्की होती। जैसा देखो दीवार है, दीवार के अंदर आपको कोई किला ठोकना है, आप एक हथौड़ी मारेंगे तो किला थोड़ी जाएगा, कितनी हथौड़ियां मारेंगे तभी किला जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो ज्ञान है हमारे जीवन में तभी अर्पण धारण होता है जब हम क्या करते हैं, इसको घड़ी घड़ी रिवाइज कर, ज्ञान को रिवाइज करते हैं, बाबा के साथ जो वायदे किए उसको रिवाइज करते हैं, फिर हमारे अंदर वो रियलाइजेशन की शक्ति आती है। हम रियलाइज कर महसूस करते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे को क्या छोड़ना है, क्या करना है, फिर परिवर्तन आता है। अगर हम सुन करके ऐसा ही छोड़ देते तो कुछ फायदा नहीं होता। शुरू शुरू में जब भी मैं आई तो साकार बाबा ने मेरे को पूना में भेजा जानकी दादी के पास। तो मैं देखती थी मुरली पूरी होती थी, जानकी दादी एक कोने में जाती बैठ जाती थी। मैं बोलती थी पता नहीं दादी क्यों जाके बैठती है उधर कोने में, मतलब बैठ जाती साइड में बैठ जाएगी कुछ। तो मैंने पूछा, मैं बोला दादी आप क्या करते इधर बैठ के? बोला मैं अपने को कूटती हूँ। मैं बोला कूटती है? मैंने कहा कूटने के लिए तो कुछ दिखता नहीं हाथ में। तो हमने कहा आप क्या कूटते हैं, हमारे को भी सिखाओ ना कूटना। तो बोला मैं अपने को कूटती हूँ, बाबा जो सुनाता है ना अंदर पक्का करती हूँ, कूटती हूँ आप। मैं बोला आप हमारे को सिखाएंगे, हम भी कूटेंगे अपने को बैठ के। परंतु हमने देखा शुरू से लेकर के जानकी दादी को विचार सागर मंथन की टेव थी। कोई भी पॉइंट होती थी ना उसके ऊपर विचार जरूर करेंगे, विचार करके जितना विचार सागर मंथन ऐसा है, ये समझो भोजन खाते हैं हम, भोजन खाने से पेट भरेगा तुम्हारा शक्ति नहीं आएगी, जब तक उसको हजम नहीं किया है तो शक्ति नहीं आएगी। तो वैसे ही हम ज्ञान जो सुनते हैं या सुनाते हैं वो समझो हम भोजन खाते हैं, ज्ञान को सुनते हैं खा लिया हमने, परंतु जब तक हमने उसके ऊपर विचार सागर मंथन नहीं किया तब तक वो हजम नहीं होता हमको, उसको पीसना चाहिए ना अंदर, हमारा लिवर तो ठीक हो गए ना तभी काम चलेगा, पर हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो इसीलिए जितना जितना हम उसको हजम करते हैं उतना उतना हमारे अंदर क्या है, ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान एक शक्ति है, वो शक्ति बन के हमारे पास आ जाती। हर प्रकार की बाबा सर्वशक्तिमान है ना, ज्ञान के द्वारा हमें सर्व शक्तियां मिलती। तो इसीलिए हमारे को उसके ऊपर सोचने की विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जो भी सुनते हैं उसके ऊपर आप विचार करेंगे और बहुत इजी है सोच, एक बार ही टेप पर जाएगी ना तो फिर अच्छी बातें ही सोचने में हमारी बुद्धि जाएगी, तो क्या होगा हमारी बुद्धि जो है ना तीक्ष्ण बनती जाएगी। वो जो डल हो गई है ना अभी घड़ी घड़ी, ये भी भूल गया वो भी भूल, अरे क्यों भूल रहे हैं, क्या हुआ भूलने को? जो भूलना चाहिए वो याद है, जो याद करना चाहिए वो भूल गए। बाबा आज भी बोल रहा था, मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं और मेरे को बोलेगे बाबा हम आपको भूल गए, कमाल। और किसी को नहीं भूलते हैं, सबको भूल जाओ कहता है, उनको याद करते हैं, जिसको याद करना है उसको भूल जाते हैं। तो प्राप्ति कैसे होगी ये बताओ? तो बेहद के वैरागी का मतलब ये हुआ, नाम मान शान इससे वैराग, मेरा नाम होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, सम्मान उसका होता है जो स्वमान में रहते। बाबा ने कहा ना स्वमान में रहने वाले सर्व को सम्मान दे सकते हैं, जो सर्व को सम्मान देता है उसका स्वतः ही सम्मान होता है, देने से मिलता है लेने से कभी नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरा नाम हो, कल परसों बाबा की मुरली था, मुरली में कल ही था, तुम्हारे को डबल सर्वेंट मिले। मैं बोला देखो क्या बाबा है क्या है, डबल सर्वेंट, बाप भी सर्वेंट है दादा भी सर्वेंट, कितना निर्माण, कितना निर्माण है। मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट माना आज्ञाकारी सर्वेंट। आजकल आज्ञाकारी सर्वेंट कहाँ मिलते हैं? तुमने आज्ञा किया आ जाओ तो मैं आ गए। तो बाबा ने देखो हम बच्चों का मान बढ़ाया, मैं बड़ा नहीं किया, हमने उसको बड़ा बनाया, क्योंकि उसने हमें बड़ा किया, आगे बढ़ाया। तो इसीलिए मेरा नाम होना चाहिए। थोड़ी समझ की बात है, अभी हमने सेवा किया, मेरा नाम क्यों नहीं होता? मेरा नाम होना चाहिए ना। आज समझो एक दुकान है, कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान के ऊपर नाम किसका होगा? मालिक जो होगा उसका नाम होगा ना, क्या सेल्समैन का नाम होगा? मालिक सेल्समैन बोलेगा क्यों मेरा नाम क्यों नहीं होता? तो हम तो सेल्समैन है ज्ञान के, तो हमारा नाम कैसा होगा? हमारे मालिक का नाम होगा ना जो होगा वो। तो हमारे को इतनी भी अक्ल नहीं है क्या कि ये दुकान किसकी है, माल किसका है, कहां से लाया तुमने ये माल सारा बताओ, कहां से आया? बाबा मिलने के पहले आपको ज्ञान का घ मालूम था? ज्ञान का एक शब्द भी मालूम नहीं था हम लोगों को, ज्ञान का घ भी पता नहीं था। ये तो बाबा ने हमको इतना था ज्ञान दिया है, माल उसका, दुकान उसकी और नाम मेरा, कोई मान सकता है? तो हमको किसका नाम वाला करना है? तो ये जो भूख है ना, ये बेहद का वैराग नहीं है। इसको कौन बोलेगा तुम बेहद के वैराग? मेरा नाम होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। अरे क्या सम्मान हमारा? तो बाबा कहता है तुम्हारा कितना नाम होता है, सारे कल्प में तुम्हारा नाम है। ब्राह्मणों के नाम से दुनिया पेट भर रही है। आज बच्चा पैदा होता है तो नामकरण कौन करता है? ब्राह्मण। स्कूल में जाता है तो कौन बिठाता है? आप आंध्र में जाके देखेंगे ना, वो ब्राह्मण के बगैर स्कूल में नहीं भेजते उसको, वो ही निमित्त बनता है। फिर धंधा चालू करते हैं तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को। शादी होती है तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को। हाँ, और फिर जब मरते हैं तो किसको बुलाते हैं? बताओ हमारा नाम कितना वाला है? क्या नाम चाहिए आपको बताओ तो सही। जन्म से लेके मरने तक हमारा नाम चलता है, फिर कौन से नाम के पीछे भाग रहे तुम? तो बाबा के अंदर नाम मान शान कुछ भी नहीं। साकार बाबा को देखा, कितना उसका मान मर्तबा था शिव बाबा आने के पहले। ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी, क्योंकि जितने हीरे जवाहरात के वो व्यापारी लोग थे ना, रोज सवेरे बाबा के पास आते थे हीरे लेके। बाबा उनको मूल्य बताता था, इन हीरों का क्या मूल्य, रोज हीरों का अलग अलग मूल्य होगा ना, तो बाबा बताता। कभी कभी कोई आके पेड़ी पर बाबा के बैठ जाता था, बाबा बोलता था काम है कुछ पूछना? नहीं बाबा, दादा हम यहाँ आके बैठते हैं ना, घर में कुछ झगड़ा होगा या कुछ होगा तो आके बैठ जाते। दादा हम यहाँ आके बैठते हैं ना, हमको बहुत शांति मिलती है लौकिक जीवन में। देखो फर्स्ट नंबर की आत्माएं, नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के बाद उसका नंबर, तो उसके जो संस्कार है वो संस्कार गए नहीं लास्ट। हम जब यहाँ आके बैठते हैं ना, हमको बहुत शांति। और बाबा धर्म का कितना पक्का था, वैष्णवपंथी था। अभी हमारे तो कोई कोई भाई बहन चलता है, खाने में भी कभी गड़बड़ कर डालता, परंतु बाबा कभी कांदा लहसुन भी नहीं, वैष्णव पंथी इतना पक्का। तो ये है उदयपुर के राजाएं, ये है जयपुर के राजाएं, इस तरफ के राजाएं भी उधर जाते थे बाबा के पास करज, क्योंकि बाबा जो डिजाइन बनाता था ना, ये राजाओं का एक नियम होता था, जब भी इनकी सभा होती थी ना राजसभा, ये कभी भी पुरानी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, हमेशा नई ज्वेलरी पहने। और बाबा नई नई ज्वेलरी की डिजाइन निकालता था, बाबा जैसी कोई नहीं बनाता, इसीलिए बाबा के पास ये रजवाड़े सब आते थे। और बाबा तो बहुत फराग दिल था, बड़ी दिल थी उसको, बहुत खातरी करता था, बहुत खातरी करता था। परंतु उनको शराब और कबाब तो मिलता नहीं था, ना शराब पीने को मिलेगा ना मांस खाने को मिलेगा। तो वो हंसते थे, वो कहते क्या लकी राज बाबू, आपकी पार्टी तो पीकी ही पीकी है। तो बाबा बोलता था अरे क्या तुम हमको कागज के नोट देते हो और हम तुमको सच्चे हीरे देते, क्या तुम्हारे कागज के नोट के पीछे क्या मैं मेरा धर्म छोड़ दूं? अरे धरत पड़िए धर्म ना छोड़, मरना भी पड़े ना तो धर्म नहीं छोड़ने का, परवाह नहीं करता था किसी। वो लोग बोलते थे देखो भगवान से ना बड़ी भूल हो गई, राजा आपको बनाना था, हमको राजा बना दीजिए। उनको क्या मालूम है इसको राजाओं का राजा बनाना है, उसको तो कैसा राजा बनाता, इतने की सेवा कैसी होती थी अगर राजा बनता था। तो बाबा की जो क्वालिटी है ना, वो नंबर वन क्वालिटी। परंतु वो ही जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, कितना सहन करना पड़ा, कितनी गालियां सुननी पड़ी, कितनी बदनामी हुई। बाबा कभी कभी हंसता था, बाबा कहता था वाट वेंदे बामन फाता, रस्ते में से बामन जा रहा था बेचारा, बिगर मतलब फंस गया, बोला मैं तो नहीं तो मेरे को कितना मानते थे और शिव बाबा आया तो मैं फंस गया, मेहमा करने के बजाय और ही उल्टा करना चालू कर दिया। पर बाबा मजे से कहता था, बाबा को कोई अरमान नहीं था उसको। तो बाबा की जीवनी एक अलौकिक जीवन थी, अनोखी जीवन थी। वो शुरू से लेके उसकी जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी अलग थी। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया, कभी भी नाम मान के पीछे मरना नहीं, कभी भी इच्छा नहीं रखना, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं इस दुनिया, पुराना वस्तु पुरानी चीजें पुरानी, पुराना पुराना हो गया, पुराने संस्कार पुराने विचार सब कुछ पुराना जो है वो छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें नई दुनिया में जाना है। इसलिए बाबा आके तुमको नया ज्ञान देता, ज्ञान ही नया है हमारा। बहुत लोग बोलते हैं ना अरे तुम्हारा तो किसी शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारा ज्ञान नया है। तो हम उनको समझाते हैं अगर भगवान को पुराना ज्ञान देना है तो उसको तकलीफ करने की क्या जरूरत है, वो तो हम रोज सुनते थे, उसको नया सुनाना है इसलिए तो आना पड़ता है। तो इसीलिए बेहद का वैराग माना इससे भी परे हो जाओ, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान, तो कहेंगे बेहद के वैरागी। ऐसा नहीं हमारा नाम होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए। और माया तो परीक्षा लेती रहेगी, छोड़ेगी नहीं माया, माया का काम है परीक्षा लेना। वो बोलती है मैं नहीं आऊं तो ये विजयी के विजयी रतन कैसे बनेंगे, दुश्मन आएगा तभी तो लड़ाई होगी ना, तभी तो विजय पराजय का मालूम पड़ेगा, नहीं आवे ही नहीं तो। कोई कोई बड़े तंग हो जाते हैं, कहते हैं हमारे को ना माया बहुत तंग करती, हमको माया बहुत तंग करती। अरे जितना बाबा को याद करना उससे ज्यादा माया को याद करते तो ज्यादा आती है, तंग क्यों करती है। हम उनको कहते घबराओ मत, तुम्हारे पर ज्यादा परीक्षाएं आती है ना, क्योंकि तुमको बड़ी डिग्री मिलनी है सबसे ज्यादा, जिसको बड़ी डिग्री ही मिलनी होती उसको ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है ना, तो तुम्हारा पद इतना ऊंचा होगा ना इसलिए तुम्हारे को इतनी में परीक्षाएं देनी पड़ती, घबराने की क्या बात, डरते क्यों है ऐसे। इसीलिए ये भी विघ्न आता है, वो भी विघ्न आता है, अभी हमने माया को चैलेंज ही किया हुआ है हा? कि हम तेरे को खलास करके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ने वाले। तो आएगी नहीं तो क्या करेगी, वो भी तो अपना आजमाएगी ना। अभी देखो कोई समझो टीवी रिपेयर की दुकान है तो वहां कौन से टीवी आएंगे, अच्छे टीवी आएंगे खराब टीवी आएंगे, बिगड़े हुए टीवी आएंगे ना। वो अरे क्या है सारा दिन बिगड़े हुए टीवी आते हैं, अरे तुमने क्या बोर्ड क्या लगाया है, टीवी रिपेयर। हमने बोर्ड लगाया विघन विनाशक, बोर्ड ही हमारे मत्थे पर विघन विनाशक है तो विघन तो आना ही है ना भाई। हाँ वो तो आना ही चाहिए ना विघन, नहीं तो विघन विनाशक कैसे हुई आप, कौन बोलेगा आपको विघन विनाशक। विघन भले आवे पर हम उनका विनाश करके बताएंगे, ठीक है। कठिन है बेहद का वैरागी बनना, नहीं है ना। चलो भाई अच्छा, ओम शांति।
आप सभी एक हाथ से ताली बजा करके एक हाथ से दीदी का दिल से धन्यवाद करेंगे। दीदी जब मम्मा बाबा की कहानी सुना रहे थे ना, हम सब देख रहे थे, देखा नहीं देखा आप लोगों ने, जिससे मम्मा की बातें कही तो ऐसा लग रहा था हम देख रहे हैं, बाबा की बातें कही तो लग रहा था बाबा सामने बैठा हुआ है। तो यही तो दीदियों के शब्दों में, दीदियों के वरदानों में अनुभव भरा हुआ होता है। सिर्फ सुनाती नहीं, दीदियां दिखाती है हमको। तो ऐसे दिल से दीदी ने हंसा, वैराग को भी कैसे सुनाया दीदी ने, आज मुस्कुरा करके हंसा हंसा करके वैराग, नहीं तो वैरागियों को कैसा दिखाते हैं, एकदम सुन्न दिखाते, एकदम वैरागियों को कैसे दिखाते, उनकी शक्ल देख करके लगता है बड़ा मुश्किल है। लेकिन दीदी ने इतने टफ सब्जेक्ट को इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ, तरलता के साथ सुनाया भी और हम सबके लिए क्या कर दिया, इतना आसान कर दिया, लगता है कि बहुत सहज है। यही तो अच्छे टीचर्स की निशानी है, टफ सब्जेक्ट को भी इजी आसान करके पढ़ाना। इसलिए दिल से दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।